המנהיגים, סיסי, פנצ'ת הדבקים, את העידור समर्पित दौराय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम ज्ञान तिमिरान्धश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सैटरडे प्रोग्राम में। और आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष विषय पर, वो है करुणा। कौन सा विषय है? करुणा या दया। तो वास्तव में शास्त्रों में वर्णन आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि इस संसार में हजारों हजारों जीव हैं जो अनेकों प्रकार के शरीर या देह धारण करते हैं और इस जगत में भ्रमण कर रहे हैं। कैसे भ्रमण कर रहे हैं? नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे, अलग अलग बॉडी से वो गुजर रहे हैं हर जीव। कभी कुत्ते के शरीर में है, बिल्ली के शरीर में है, सुअर के शरीर में है, मछली के शरीर में है। जीव तो एक ही है, आत्मा है। और वही आत्मा जब शरीर धारण करता है उसे जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव। तो ऐसा जीव नाना शरीरों में भ्रमण करता है और एक ही अभिलाषा को लेकर, और वो अभिलाषा क्या है? वो परमानेंट या शाश्वत सुख की अनुभूति करना चाहता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये उसके लिए बहुत ही दुर्लभ है, शाश्वत सुख की अनुभूति करना अशाश्वत जगत में। कौन से जगत में? अशाश्वत जगत में शाश्वत सुख की अनुभूति करना उसके लिए स्वप्नवत है, उसके लिए स्वप्न है, ड्रीम है। लेकिन वास्तव में ये चीज संभव है यदि व्यक्ति ये जगत में दो वस्तुओं के संपर्क में आता है। आवाज थोड़ा कम करवा सकते हैं या फिर? हरे कृष्ण। तो यदि व्यक्ति दो चीजों के संपर्क में आता है तो ये संभव है। इसलिए शास्त्रों में, हरे कृष्ण, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ठीक थोड़ा कम हरे कृष्णा। तो शास्त्र कहते हैं कि यह संभव है यदि व्यक्ति इस जगत में दो चीजों के संपर्क में आता है, और वो दो चीजें क्या हैं? पुराणों में वर्णन आता है संसार विष वृक्ष द्वे फले ही अमृतोपमे, कि इस संसार की इस जगत की तुलना शास्त्र एक विषमय वृक्ष से करते हैं। किस चीज से करते हैं? विषमय वृक्ष से। और इस विषमय वृक्ष है तो स्वाभाविक है उस वृक्ष को फल होने चाहिए। तो इस वृक्ष के फल कैसे हैं? विषमय वृक्ष है तो उसके फल भी कैसे होंगे? जहरीले होंगे, विषमय होंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं संसार विषानले दिवानिशी हिया ज्वले जुड़ाए ते ना कहीं न उपाय, कि मैं मेरे पास इस जगत में कोई और उपाय मुझे नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं दिन रात दिवानिशी हिया ज्वले दिन रात जल रहा हूं। किस चीज में जल रहा है जीव? विष अनले, विष मीन्स इस इंद्रियों के द्वारा जो भौतिक सुख की जो कामना है वो व्यक्ति के विष के समान जलाती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा संसार विष अनले, अनले मीन्स आग फायर, और इंद्रियों के द्वारा जो सुख अनुभूति करता है जीव, क्योंकि उसको पता ही नहीं है किस इंद्रियों के द्वारा दिव्य सुख की भी अनुभूति की जा सकती है, लेकिन वह रजो और तमोगुण में लिप्त होने के कारण वह अपने इंद्रियों के द्वारा भौतिक सुख की कामना से दिन रात दिवानिशी हिया ज्वले दिन रात क्या होता है? जलता है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि वास्तव में ऐसा जो जीव इंद्रियों के द्वारा सुख की अनुभूति करना चाहता है उसकी सुख उसको जो प्राप्त होने वाला सुख है, क्योंकि वह सुख रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है, तो ऐसा सुख शुरुआत में आनंददायी है। कैसा है? आनंददायी है। यद अग्रे अमृतोपमे, अमृतोपमे में शुरुआत में अमृत के समान है, लेकिन परिणाम विषमेव, इसका परिणाम या अंत विष में होने वाला है, नाना प्रकार के दुखों में कष्टों में। इसलिए जीव की ये जगत में सुख प्राप्ति की जो कामना है अभिलाषा है ये विष को पीने के समान है। इसलिए शास्त्र कहते हैं संसार विष वृक्ष से, कि ये जो जगत है ये संसार एक वृक्ष के समान है, और ऐसा जो वृक्ष है ये विषमय वृक्ष है। तो विष रूपी ये जो वृक्ष है संसार सागर संसार जगत, तो स्वाभाविक रूप से इसके जो फल हैं वो विषमयी होंगे। इसी कारण से शास्त्र बारंबार जोर देते हैं कि लेकिन परंतु बट लेकिन ऐसे विषमय वृक्षों को दो बहुत अच्छे फल हैं। कितने बहुत अच्छे फल हैं? दो। जैसे गुलाब का पेड़ होता है, पेड़ कहते हैं क्या कहते हैं, पौधा होता है, कांटों से भरा होता है, लेकिन उसके फूल कितने अच्छे होते कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये जगत कांटों से विपदाओं से भरा हुआ है, विष रूपी फलों से भरा हुआ है। इस जगत में किए जाने वाले जो प्रयास हैं वो सारे प्रयास हमें भौतिक दुखों की ओर ही ले जाने वाले हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि द्वे फले ही अमृतोपमे, परंतु इस संसार रूपी विष रूपी वृक्ष को दो बहुत अच्छे फल हैं, और वो फल इतने अधिक आस्वादनीय है मिठास है उनके, कि यदि व्यक्ति उन दो फलों के संपर्क में आता है तो वो व्यक्ति को भाग्यवान कहा गया है। क्या कहा गया है? भाग्यवान। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, तो उस व्यक्ति को भाग्यवान कहा गया है, और जो व्यक्ति इन दो के संपर्क में नहीं आता वो व्यक्ति भाग्यवान नहीं है, दुर्भाग्यशाली है या अभागा है, अनफॉर्चुनेट जीव है। तो वो क्या है दो फल? शास्त्र कहते हैं कदाचित केशवे भक्ति, पहला फ्रूट क्या है? कदाचित केशवे भक्ति। केशव, केशव किसका नाम है? कृष्ण का। तो ऐसे जो कृष्ण है, केशव है, केशव नाम उनको क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने केशी आसुर का वध किया था ब्रज में। केशी घाट आपने देखा है, यमुना के किनारे केशी घाट है, केशी आसुर को भगवान ने मारा। केशव या उनके केश बहुत मुलायम और घुंघराले हैं और आकर्षक है, इसलिए भी कृष्ण को केशव कहा जाता है। तो भगवान के अनंत कोटि नाम है। तो शास्त्र कहते हैं कदाचित केशवे भक्ति, और क्या है दूसरा? तद भक्तार समागमः। दूसरा फल है, पहला फल है भगवान की भक्ति के संपर्क में आना या भगवान के भक्ति रूपी फ्रूट का आस्वादन करना, और दूसरा है ऐसे परम भगवान के भक्तों का संग लाभ होना। क्या लाभ होना? भक्तों का संग। तो शास्त्र कहते हैं इसलिए वो जो भाग्यवान कहलाए जा सकते हैं, हाँ, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, उन्हीं को ये भाग्यवान कहा जा सकता है जो लोग केशव के कृष्ण के भक्ति के संपर्क में आए हैं, और जो लोग ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों के संपर्क में हैं, उनका संग लाभ कर रहे हैं, उन लोगों को वास्तव में भाग्यवान कहते हैं। और इस जगत में इस विषमय वृक्ष को ये अमृत के समान फल है। ये दो क्या है? फल ऐसे हैं जो अमृत के समान है। बाकी जितना मर्जी हमारा एंडेवर है, प्रयास है, वो सारा निष्फल है। इसलिए शास्त्र बारंबार इस चीज पर जोर देते हैं कि वास्तव में उसी व्यक्ति को भाग्यवान कहा गया है। अभी इस संसार में हम देखते हैं कि भाग्यवान वो है जिसके पास धनम देही, जिसके पास बहुत धन आ गया है, जन्म देही, उसके पास फॉलोअर्स है, बहुत अच्छे कुल में जन्म मिला है, रूपवती भारिया देही, बहुत सुंदर पत्नी या सुंदर पति, या बहुत बड़ा नेम फेम ग्लोरीज आदि जिसके पास है, व्यक्ति सोचता है कि ये बहुत भाग्यशाली है। इस संसार में हम देखते हैं जब किसी के पास भौतिक सुविधाएं आती हैं तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, लेकिन कुंती महारानी कहती कि नहीं, ऐसा व्यक्ति सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है जिसके पास भौतिक सुविधाओं का भंडार भरा पड़ा है। क्यों दुर्भाग्यशाली है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भारत में जन्म मिलने के बाद भी वो अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जाल, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिस व्यक्ति ने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उस व्यक्ति का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? अपने जीवन को सार्थक करना। और यदि ये नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। कुंती महारानी ने कहा क्यों दुर्भाग्यशाली है? यदि व्यक्ति के पास ये चार चीजें आ जाती है तो वो भगवत भक्ति करने के लिए निष्फल हो जाता है। तो उन्होंने वो कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री। कुंती महारानी ऐसी लेडी थी, ऐसी माता थी, पांडवों की माता, जिनके पुत्र महान भक्त रहे। तो ऐसे जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो कुंती महारानी जब कृष्ण द्वारका वापस जा रहे थे, और कृष्ण जब हस्तिनापुर से बाहर निकले और अपने रथ के ऊपर चढ़े तो कुंती महारानी दौड़ते हुए आई। कुंती महारानी का कृष्ण से बहुत अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्रेम और लगाव था। तो ऐसे कुंती महारानी एक स्त्री होने के बावजूद भी कृष्ण की महान भक्ति कहलाई। तो ऐसे कुंती महारानी कहती है उनकी कई प्रार्थनाएं हैं, बल्कि श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से होती है। इतना महान दर्जा एक स्त्री को दिया है श्रीमद् भागवतम में। तो इस प्रकार से जो कुंती महारानी है, तो ऐसी कुंती महारानी कृष्ण को कहती है एक प्रार्थना में कि हे कृष्ण, मेरा जो स्नेह में एक स्त्री के रूप में मैंने जन्म ग्रहण किया है, और स्वाभाविक रूप से मेरा जो आकर्षण है वो किस चीज के लिए है, या मेरा स्वाभाविक जो स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, आसक्ति है, दोनों परिवार के प्रति है, मेरे पिता का भी परिवार और दूसरा पति का भी परिवार। तो वो कहते हैं कि हे कृष्णा, मेरा जो ऐसा आसक्ति है, लगाव है, प्रीति है, इसको आप निकाल दो, हटा दो मेरे हृदय से और मेरा प्रेम कृष्ण केवल 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 आपके लिए स्थापित हो जाए। मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, जिस प्रकार से जो गंगा है समंदर की ओर बिना किसी रुकावट के बहती है, उसी प्रकार से हे कृष्ण मेरा जो प्रेम है अब वो बहना चाहिए। हाँ ठीक है, मेरा जो प्रेम है वो आपके चरणों के प्रति लगना चाहिए। तो ऐसी कुंती महारानी कहती है शुरुआत में कि जन्म पहली चीज है, जन्म जिन लोगों ने उच्च कुल में जन्म लिया है तो वो लोग भगवत भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। हम देखते हैं इस संसार में जन्म, दूसरा है ऐश्वर्य, बहुत ज्यादा ऑपुलेंस ऐश्वर्य धन आदि होने के कारण भी लोग भगवत भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। जन्म ऐश्वर्य श्रुतः, श्रुतता में मतलब है जो सौंदर्य है, सौंदर्यवान भी सोचते कि क्या आवश्यकता है भगवान की भक्ति करने की, मेरे जीवन में मुझे कोई नेसेसिटी या आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, कृष्ण मेरे जीवन में चाहिए या नहीं चाहिए। जन्म ऐश्वर्य श्रुतः और चौथी चीज श्री मिस जो नॉलेज है, तो जो ज्ञान है भौतिक ज्ञान होने के कारण भी व्यक्ति भगवान के भक्ति को गंभीरता से स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कुंती महारानी कहती है कि जैसे ही चार चीजें व्यक्ति के पास आती हैं, यद मानह मदह कुमान, मद मीन्स घमंड गर्व अपने पास उस व्यक्ति के पास आता है कि मेरे पास इतना भौतिक क्वालिफिकेशन है, यही जो गर्व है घमंड है वो भगवान के भक्ति के या भगवान के चरणों के प्रति हमारे समर्पण को रोकता है, हमारे सरेंडर को रोकता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है और वास्तव में वही भाग्यशाली व्यक्ति है जो भगवान के भक्ति के संपर्क में आया है और भक्ति के साथ साथ भगवान के भक्तों के संपर्क में आया है। क्योंकि भगवान के संपर्क में आने मात्र से आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, किसके संपर्क में आना पड़ेगा? भगवान के भक्तों के संपर्क में आना पड़ेगा, उनका संग लाभ करना पड़ेगा, तभी वास्तव में भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भगवान के भक्तों का जो प्रॉपर्टी है वो कृष्ण है, इसलिए भगवान के भक्तों को निष्किंचन कहा गया है। क्या कहा गया है? निष्किंचन, कि उनके पास भौतिक जगत का कोई संपदा नहीं होती, उनका जो संपदा है ऐश्वर्य है वो कृष्ण है। इसलिए शास्त्र कहते प्रभुपाद कहा करते थे कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्योर डिवोटीज, कि कृष्ण तो केवल उनके शुद्ध भक्तों की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे जो भगवान के भक्त है उनमें ये सामर्थ्य है कि किसी भी जीव को वो कृष्ण डिलीवर कर सकते हैं, इतना बड़ा सामर्थ्य उनके पास है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से भी अधिक गौरवशाली हैं। क्या है? भगवान से भी अधिक गौरवशाली हैं, महान हैं, बढ़कर हैं। तो इसलिए ऐसे जो भगवान के भक्त हैं जिनके गुणों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, उनके अलग अलग गुणों का वर्णन, या भक्तों का दूसरा शब्द साधु है। क्या शब्द है? साधु। साधु का मतलब है साधु केवल अपने वेशभूषा आदि से साधु नहीं कहलाता, कि उसने लंबी दाढ़ी रखी है, लाल वस्त्र आदि धारण किया है, परिवार आदि का त्याग किया है, नहीं। साधु का मतलब है उसकी मनोवृत्ति, उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? साधु के समान होना चाहिए। वो कोई भी साधु हो सकता है। हम भागवतम में सारे साधुओं का चर्चा पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, अमरीश महाराज है, गोपिकाएं हैं, ये सब क्या है? महान साधु हैं। बल्कि उनका बाहरी वेशभूषा आदि साधु के समान नहीं है, लेकिन उनका जो मनोवृत्ति है, उनका एटीट्यूड है, वो साधु के समान है। और साधु की मनोवृत्ति क्या है? चैतन्य महाप्रभु एक ही भाषा में कहा करते थे, पर दुखी दुखी। क्या है साधु का मनोवृत्ति? पर दुखी दुखी। और इस संसार में बिल्कुल उल्टा है,
हम सबके भौतिकवादी लोगों का जो मनोवृत्ति है पर दुखी सुखी। इसलिए जब कपिल देव को उनकी माता देहवती पूछती है साधु के गुणों का वर्णन करो, क्या है क्वालिटीज, साधु के गुण क्या है, तो कपिल देव कहते हैं तितिक्ष्वाकारुणिका सूरदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। भूषणा मीन्स अलंकार, ऑर्नामेंट्स जिसको कहते हैं, जैसे स्त्रियां नाना प्रकार के जो आभूषण धारण करके सुंदर होती हैं, तो उसी प्रकार से एक जो भक्त है साधु है वो बाहरी वेशभूषा आदि से सौंदर्यवान नहीं होता, वो कैसे सौंदर्यवान लगता है उसके गुणों से, कैसे गुणों से। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि साधु का पहला गुण है तितिक्ष्वा। तितिक्ष्वा क्या गुण है? तितिक्ष्वा, तितिक्ष्वा का मतलब है सहनशीलता। क्यों उसके अंदर सहनशीलता है? हाँ, जैसे हम शास्त्रों में हजारों उदाहरण पढ़ते हैं भक्तों के जीवन में इतने इतनी विपदाएं आए लेकिन उनके पास वो सामर्थ्य रहा कि पहाड़ के समान आघात होने के बावजूद भी वो गिरते नहीं है। भजन्ते मां दृढ़ व्रता, भगवान ने क्या कहा ऐसे लोगों को, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढ़ व्रता या भजन्ते मां दृढ़ व्रता। भगवान कहते हैं कि मेरे जो साधु हैं वो दृढ़ता के साथ मेरा भजन करते हैं। भजन कैसे करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के भक्त हैं वो दृढ़ता के साथ भजन करते हैं, उनके अंदर सहनशीलता है। क्यों सहनशीलता है? क्योंकि उनका हृदय में कारुणिका है, क्या है? करुणा है, दया है, दया ही सर्वभूतेषु। ऐसे नहीं कि अपने फैमिली के लिए बहुत दया है या अपने देशवासियों के लिए भारतवासियों के लिए दया है और पाकिस्तान वालों के लिए क्रूर भावना है, ये साधु का गुण नहीं है। दया ही सर्वभूतेषु, अपने बच्चों के प्रति दया है लेकिन मुर्गी के जो बच्चे हैं या एनिमल्स हैं उनके प्रति दया नहीं है, उनको काट काट के क्या करेंगे, जीवा की तुष्टि करेंगे, ये साधु नहीं है। सहनशीलता इसलिए है क्योंकि उनके हृदय में करुणा है, हाँ दया है, दया की भावना है। और क्यों साधुओं के हृदय में दया है? क्योंकि कृष्ण में क्या है? हे कृष्णा करुणा सिंधु, कृष्ण कैसे सागर है? करुणा के सागर है। करुणा का मतलब है दया, कंपैशन। हाँ, तो इस संसार में उनके अंदर दया है और सारे जीवों के प्रति, इसलिए भक्तों को कहा गया है वैष्णव पर दुखी दुखी, कि वो देखता है इस जगत में जो दुख से भरे हुए हैं उसके हृदय में भी दुख महसूस होता है और ये जगत में बिल्कुल उल्टा है। मैं उस दिन एक लेक्चर दे रहा था, मैंने उसमें एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार एक व्यक्ति बहुत सारा तपस्या करता है, अपने भगवान का तपस्या करता है, पूजा अर्चना करता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं, बोलो क्या चाहिए, भगवान जो मैं कहूंगा ना वो मिल जाना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, तो बहुत खुश हो गया लेकिन कहा, भगवान ने कहा सारी डिमांड्स तुम्हारी पूरी हो सकती है, जैसे बोलोगा वैसे ही होगा, कौन नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं कि नहीं। तो भगवान ने कहा लेकिन एक 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 चीज होगी, तुम जब कहो तुम्हें एक चीज चाहिए तो तुम्हारे पड़ोसी के लिए दो चीजें मिलेंगी उसी क्षण, क्या हो जाएगा, पड़ोसी के लिए दो चीजें। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मिले तो मिले, मुझे तो एक मिल रही है ना, इनफ है। तो उस समय ये व्यक्ति घर आता है, देखता है अरे मेरे घर का क्या हालत है, पेंटिंग पेंटिंग नहीं है, छोटा सा घर है, पुराना घर है, भगवान क्या है पहले डिमांड, घर चाहिए, निवास। जैसे उसने कहा भगवान इतना बड़ा कोठी चाहिए, इतने बेडरूम्स ड्राइंग रूम्स टॉयलेट बाथरूम और सब कुछ होना चाहिए, तो उससे उसके पड़ोस में उसने देखा अपने घर में चढ़कर, पड़ोस में कितने घर बन गए थे, दो, चलो ठीक है और दो ठीक है। फिर ये मांगने लगा छोटा सा कार है भगवान, लंबा कार होना चाहिए, यूरोपियन बड़ा कार होना चाहिए, तो इसने जैसे डिमांड किया पड़ोसी के घर में झांकता है तो कितने का दो। आप देखेंगे कि उसने एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपना लिस्ट बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते हाँ उसने वो सोचने लगा तपस्या मैं करो, हरे कृष्ण मंत्र मैं जप करो, चार नियमों का मैं पालन करो, प्रत्येक हर सैटरडे लेक्चर में अटेंड करो और सारा लाभ ये पड़ोसी प्राप्त कर रहा है। तब इसको गुस्सा आ गया, ये क्या आप बैठा और उसने कहा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। क्या बोला उसने, एक आंख फूट जाए, चली जाए, टूट जाए, अंधा हो जाऊं मैं एक आंख से। क्यों ये एटीट्यूड आया, पड़ोसी के कितनी चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार में हाँ ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ जगत है, क्योंकि यहां सारे जो जीव है अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं, इंद्रिय तुष्टि में लगे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत के जो लोग हैं पर दुखी सुखी, क्या है पर दुखी सुखी, लेकिन वैष्णव का हृदय नहीं, पर दुखी दुखी। हाँ इस क्यों, हाँ इसलिए क्योंकि वो जानता है कि संसार में जितने भी जीव हैं वो उनके दुखों की एक में दुखों का एक में जो कारण है वो यही है। क्या कारण है कि उनका जो संबंध है वो कृष्ण से नहीं है, कृष्ण से संबंध न होने के कारण सारे जो जीव हैं इस भौतिक जगत में दुख अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए भगवान के भक्त की जो करुणा है, भगवान के भक्त की जो दया है, हाँ कृष्ण से भी बहुत अधिक उनके हृदय में है। उनके हृदय में जो करुणा का सागर है, दया का सागर है, वो इतना डीप है कि आप जितना मर्जी उसमें गहरे इंच में चले जाओ उसका अंत खोज नहीं सकते। और ये जो करुणा का सागर या दया की जो भावना एक वैष्णव के हृदय में होती है वो सागर इतना विशाल है कि उसका उसको कोई किनारे नहीं है, शोर नहीं है। इसलिए उसको क्या कहा गया है, करुणा सिंधु। इसलिए कृष्ण को भी वही कहा गया है कि ऐसा सागर जिसकी गहराई आप नाप नहीं सकते, ऐसा सागर जिसमें तट नहीं है, शोर नहीं है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि इसी कारण हाँ जो वैष्णव है भक्त है वो पर दुखी दुख दुखी है। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि संसार में दुखों का एकमेव कारण है कि लोग भगवान से अलग हो गए हैं। जिस प्रकार से मछली पानी से अलग हो जाए तो वो सुखी नहीं रह सकती, या फिर पेड़ के जड़ में पानी ना दिया जाए पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता, शरीर में पेट को भोजन नहीं दिया जाए तो पूरे शरीर में स्ट्रेंथ या शक्ति नहीं हमें अनुभव हो सकती। तो उसी प्रकार से इस संसार में जितने भी हमारे प्रयास हैं सुख शांति आदि के लिए तब तक विफल है जब तक हम अपने जीवन में कृष्ण को गंभीरता से नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, कृष्ण को अपने जीवन में गंभीर, हाँ कृष्ण को ले लिया लेकिन कैसे लेना है कृष्ण को अपने जीवन में गंभीरता से, जिस प्रकार से पांडवों ने लिया था। पांडवों का जो जीवन है वो कृष्ण के लिए था, उनको कृष्ण चाहिए, उनको पता है, अर्जुन को पता है यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो ध्रुवा, जहां भी कृष्ण है वहां ऐश्वर्य है, सफलता है, सब कुछ है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन भी गए थे भगवान के पास। दुर्योधन जाकर भगवान के सर, जब भगवान आराम कर रहे थे तो दुर्योधन जाकर सर के पास बैठता है और अर्जुन जाकर कहां बैठता है, कृष्ण के चरणों में। इसलिए शास्त्र कहते हैं सारंगानां पदाम्बुजम्, भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। और जैसे ही कृष्ण उठे तो उन्होंने सबसे पहले उनका जो दृष्टिपात है वो अर्जुन के ऊपर चला गया। ये कभी संभव हो सकता है कि भगवान उठते ही किसी अभक्त का दर्शन करने में आनंद अनुभव करें? आपको अच्छा लगेगा कि आप जिसे बहुत ईर्ष्या द्वेष आदि करते हो बहुत आपका फाइट होता है, आप कहते हो इसका मुंह देखना नहीं चाहता या मुंह देखना नहीं चाहती, और वो सुबह सुबह आपके सामने प्रकट हो जाए, आनंद आएगा नहीं? तो कृष्ण कैसे संभव है उठते ही दुर्योधन को देखे? किसको देखना चाहेंगे कृष्ण? अर्जुन को, उनके भक्त को। जैसे कृष्ण उठे, अर्जुन को देखा, कृष्ण बहुत आनंद की अनुभूति उनको हुई और अर्जुन से बात शुरू ही करने वाले थे, पीछे से आसुर बैठा था दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन दूसरों के धन हड़प करने के लिए जो एक्सपर्ट है उसको दुर्योधन कहते हैं। अब उनका बाप, उनका पिता भी वैसे ही था, धृतराष्ट्र, दूसरों का राष्ट्र मीन्स भूमि आदि संपदा को जो हड़प करने में चतुर है, एक्सपर्ट है, उसको क्या कहते हैं? धृतरा, दृष्टता से या धूर्तता से धृतराष्ट्र। तो ऐसे दुर्योधन भगवान के पास गया कि हम अभी युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपकी सहायता लेने के लिए आए हैं। अर्जुन ने कहा हम भी। तो भगवान ने कहा मेरे पास तो देखो दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास बलशाली नारायणी सेना है और दूसरा मैं हूं। मेरी नारायणी सेना यदुवंशी सेना इतनी शक्तिशाली है, इतनी सामर्थ्यवान है कि इस संसार में उनका विनाश करने का सामर्थ्य किसी और में नहीं है, और दूसरा मैं युद्ध में आ जाऊंगा। दोनों में से किसी को चूज करना है आपको। हाँ, मैं दोनों में आऊंगा लेकिन मैं कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फिर दुर्योधन सोचता है ऐसे निकामी व्यक्ति का क्या लाभ, हमें भी वैसे ही लगता है, अरे भगवान का मेरे जीवन में क्या काम, क्या उठते ही उनका नाम जप करो, उनके बारे में पढ़ो, भक्त लोग फोन करते सेवा भी करो, कुछ हो तो नहीं रहा है, क्या लाभ क्या है लाइफ में, क्या नीड है। दुर्योधन का ये मेंटेलिटी है कि मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे भगवान की चीजें चाहिए, भगवान की संपदा चाहिए। हम ही मंदिर आते भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, धनम देहि जनम देहि रूपवती सुंदर बारिया देहि, अपने डिमांड्स मांगने के लिए आते। भगवान कहते तुम ना ये गोविंदे इधर अल्टर में अच्छे लगते और भक्त लोग आपकी बहुत अच्छी सेवा करते, इधर ही ठीक है, घर मत आना, घर में बहुत ट्रबल होगा। कौन ना एक बच्चे दो बच्चे संभालने के लिए कितना कष्ट होता है, उसमें और एक भगवान भी आ जाएंगे, उनके इतने सारे सेवा करो, षोडश उपचार कठिन है। भगवान तुम यहाँ ही ठीक लगते हो और बहुत सुंदर लगते हो। हाँ, जैसे हम देखते हैं कार्तिक में, आपने देखा दामोदर, यशोदा दामोदर सुंदर लग रहे थे कि नहीं? आपको कहा जाए दामोदर और यशोदा को घर में ले जाओ एक हफ्ते के लिए, कितने लोग तैयार हो जाते, कोई तैयार नहीं होता। तो ऐसा जो दुर्योधन है उन्होंने कहा भगवान आप तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आपकी चीजें जरूर चाहिए, आपकी सेना मेरे पास हो। हजारों, कितने हजारों सैनिक थे भगवान के, सारा शस्त्र अस्त्र आदि। लेकिन जो अर्जुन है, अर्जुन ने कहा कि ये भगवान मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? आप चाहिए, कृष्ण चाहिए। और देखते हम उसका रिजल्ट उनके जीवन में। पांडवों का यही जीवन है कि उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन में रखा, ऐड किया, या कृष्ण को प्राथमिकता दी अपने लाइफ में, प्रायोरिटी दी, प्रायोरिटी देना लाइफ में कृष्ण को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कृष्ण को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में प्रायोरिटी देना मींस उठते ही हमें क्या चांट करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण को लाइफ में प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना मींस मॉर्निंग आवर्स में हमें हरि नाम को प्रायोरिटी देना, चैंटिंग को प्रायोरिटी देना, वो वास्तव में कृष्ण को लाइफ में प्रायोरिटी देने के समान है। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, साधुगण हैं, वो जानते हैं कि जो जीव है उसके दुखों की जड़ है कि उसने अपने जीवन में कृष्ण को सही रूप से गंभीरता से स्वीकारा नहीं है। आप कृष्ण को गंभीरता से लेते हो तो कृष्ण भी आपको कैसे लेंगे, गंभीरता से लेंगे, है कि नहीं? आपके घर में किसी अतिथि आता है, आप यदि उसका प्रॉपरली गंभीरता से उसका वेलकम करते हो, उससे बातें करते हो, उसका खुशहाली आदि पूछते हो, इसका मतलब आपने उस अतिथि को क्या लिया, सीरियस ले लिया, गंभीरता से लिया। तो वो अतिथि भी वो आया तो वो आगे चलकर आपको भी कैसे लेगा, ट्रीट करेगा, उसी एटीट्यूड से, गंभीरता से। तो उसी प्रकार से कृष्ण है। कृष्ण कोई स्टैचू नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो पर्सन है, व्यक्तित्व है। और कृष्ण वो पर्सनैलिटी है जो हमारी छोटी सी छोटी चीजों से भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण है, जो न होने के कारण है हमारे जीवन में दुख है, और इसकी जानकारी केवल भगवान के भक्तों को है। हाँ, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है और ये उनका स्वभाव है, नेचुरल है। भक्तों के हृदय से जो कंपैशन है, करुणा की जो भावना है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे एक संत थे महाराष्ट्र में, एक नाथ, वो जब गोदावरी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, जब गए हैं तो बारिश के पानी से बहुत पानी बढ़ गया था और एक बिच्छू भी उसमें से बह रहा था। ये जब स्नान कर रहे थे तो उस समय उन्होंने उस बिच्छू को उठाया और उठा के उन्होंने सोचा कहां डालो इसको, बाहर किनारे में डालो, मर रहा है। तो उसको उठा ही रहे थे तो बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना। जैसे वो उठाते थे थोड़ा ऊपर, तुरंत वो डंक मार देता था, हाथ से गिर जाता था। फिर ये क्या करते थे, तो उसको उड़ के उठा लेते थे बाहर डालने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार हुआ। और ये सारा दृश्य किनारे पर बैठा हुआ एक व्यक्ति देख रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा, अरे अरे छोड़ दो ना इसको, ये क्या कर रहा है, बारंबार काट रहा है। उसने साधु ने, वो जो एकनाथ थे संत, कृष्ण के महान भक्त थे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इसका स्वभाव है, नेचर है, जो उसको त्याग नहीं रहा है जन्म मारना, उसी प्रकार से मेरा नेचर, मेरा स्वभाव क्या है, उसके प्रति कंपैशन, करुणा, दया। तो ये वास्तव में जो भगवान के भक्तों में 26 गुण होते हैं, उनमें एक गुण का वर्णन चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में करते हैं, सर्व उपकारक, ये शब्द यूज करते हैं, सर्व उपकारक। चैतन्य महाप्रभु ने उसी चीज को कहा, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्मजार, जिस व्यक्ति ने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है जन्म सार्थक करें, पहले तो अपने जन्म को उसको सार्थक करना चाहिए। और दूसरा क्या है, कर पर उपकार, जो भी उस व्यक्ति के संपर्क में आता है उस पर उपकार करने की भावना रखनी चाहिए। और इसलिए वास्तव में मनुष्य जीवन है। अन्यथा जो ऐसे भारत भूमि में जन्म लेने के बावजूद भी ये जो दया की या उपकार करने की भावना है, ये प्रदर्शित नहीं करता, अंगीकार नहीं करता, प्रकट नहीं करता, तो उसको श्रीमद् भागवतम में बहुत अधिक रूप से उसको डांटा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति उन पशुओं के समान है, पशुओं के समान है, जो व्यक्ति ये उपकार की जो भावना है इसको प्रकट नहीं करता। यहाता भूत दयया सो शोच स्थावर है रपि, स्थावर, स्थावर मीन्स पशु, उनके समान ही है जो व्यक्ति ये जो दया की भावना है इसको प्रकट नहीं करता है। इसलिए शास्त्र इस चीज पर बारंबार जोर देते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने ये भारत भूमि में जन्म लिया है उसको ये कार्य करना चाहिए। और ये स्वयं कृष्ण कहते हैं, एक बार कृष्ण अपने जो सखागण आदि हैं, हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्री दामन बलार्जुना, कृष्ण जब अपने सखाओं के संग में गौओं को चराने के लिए जा रहे थे वृंदावन में, तो कहते हैं स्तोक कृष्ण, उनके एक सखा का नाम है, क्या है, स्तोक कृष्ण, हे श्रीदाम, हे सुबल, हे मधुमंगल, हे बलराम, ऐसा कृष्ण सबको बुलाते एक बार। और वो कहते देखो देखो क्या दिखाया कृष्ण ने, कृष्ण ने दिखाया कि देखो कि जब ये लोग जा रहे थे, क्योंकि भगवान जैसे गोचारण करने के लिए निकलते थे तो स्वारा ब्रज उनकी सेवा के लिए एक्टिव हो जाता था। ब्रज की जो धूली है गर्म है तो वो बहुत ठंडी हो जाते थे, बादल अम्ब्रेला के समान, छाते के समान कृष्ण के ऊपर चलते थे, और जो वृक्षगण आदि हैं कृष्ण की सेवा के लिए झुक जाते थे नाना प्रकार के फलों के साथ, प्लीज आप मेरी इस भेंट को स्वीकार कीजिए। और ये सारा दृश्य कृष्ण देख रहे थे, और कृष्ण ने अपने सारे सखाओं को, मित्रों को बुलाया और कहा, देखो देखो देखो, किसको दिखा रहे थे? वृक्षों को दिखा रहे थे कृष्ण। वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि महाभाग परार्थ कांत जीविकां, ये जो वृक्ष है ये सर्व सामान्य नहीं है, ये महाभाग है, और उसी को ही गीता में कृष्ण महात्मा कहते हैं। ये महात्मा है सारे वृक्ष, क्योंकि इनका जो जीवन है परार्थ जीविका, दूसरों के लिए जी रहे हैं, ये अपने लिए नहीं जी रहे। कृष्ण ने कहा कि ये अपने जीवन में धूप सहेंगे, बारिश सहेंगे, कोई व्यक्ति आएगा उनको काटेंगे भी, फिर भी उसके नीचे बैठकर ये उनको छाया देने के लिए तैयार है, ये उनको फल देने के लिए तैयार है। उनका शरीर जो लकड़ी है वो दूसरों के काम आता है। मतलब कृष्ण ने कहा ये जो वृक्ष है इनका जो पूरा जीवन है परार्थ, दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए है, पर उपकार के लिए है। सर्वभूते हिते रता, सारे जीवों के हित में इनका जीवन है, कृष्ण कहते हैं। लेकिन हमारी स्थिति देखा जाए हाँ, तो हम क्या है? सर्वभूते हिते रता नहीं है, हाँ फैमिली हिते रता, अपने परिवार का हित के लिए, देश के हित के लिए है, कम्युनिटी के हित के लिए है, अपने कुत्ते के हित के लिए है, लेकिन सारे जीवों के हित के लिए नहीं है, ऐसी स्थिति है। सर्वभूते हिते रता नहीं है। कृष्ण ने कहा ये वृक्ष से सीखो जिनका जीवन हाँ सबके लिए है, और कुछ मात्रा में नहीं, पूर्ण रूपेण। इसलिए कृष्ण इन सबको कहते हैं, एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिशो, उन देहदारी जीवों का, उन व्यक्तियों का तब जन्म सफल है। कब जन्म सफल है? कृष्ण कहते हैं जब वो क्या करेंगे, प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, आचरणम मीन्स अपना जो आचरण है, सदा मीन्स हमेशा, किसके लिए? दूसरों के हित के लिए या भगवान की सेवा के लिए। कैसे लगाना चाहिए व्यक्ति को? प्राणेर, सबसे पहले क्या लगाओ? प्राण, लाइफ लगा दो भगवत सेवा के लिए। कृष्ण कहते जिस प्रकार से इन वृक्षों का लाइफ है, क्योंकि हमने हमारा लाइफ तो करोड़ों करोड़ों जो जीवन है अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए या और भौतिक चीजों के लिए लगा दिए, कितने जीवन हमने गवा दिए। लेकिन कृष्ण कहते कि हे बलराम, हे स्तोक कृष्ण, हे सुबल, हे मधुमंगल, इन वृक्षों से सीखो कि व्यक्ति को सबसे पहले तो प्रयास होना चाहिए, प्राणेर अपना जीवन लगा दो भगवान की सेवा में, तब वास्तव में सफल है उसका लाइफ। और इसलिए हम देखते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में वर्णन आता है ददीचि ऋषि का, ददीचि मुनि, जब ये जो इंद्र आदि हैं इनका सारा ऐश्वर्य छीना गया, स्वर्ग आदि उनसे छीना गया और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर भगाया गया, तो ऐसे देवतागण क्यों, किसने भगाया था? एक वृत्रासुर नामक आसुर, जो भगवान के मान भक्त थे पहले जीवन में, चित्रकेतु नाम था उनका, किंग चित्रकेतु। तो ऐसे जब वो आसुर बने थे अपने अगले जीवन में वृत्रासुर, तो उन्होंने सबको हरा दिया था, सारे देवतागण परेशान थे, सारे लोग विपदा में थे, तो भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने, भगवान ने कहा इस आसुर को मारने के लिए एक ही आस्त्र बना, एक आस्त्र बनाया जा सकता है, और उस आस्त्र का नाम होगा वज्र। इंद्र के पास कौन सा आस्त्र है? वज्र है। तो वो वज्र कैसे बना? तो भगवान ने कहा जो ददीचि ऋषि है उनकी तपस्या से उनका शरीर बहुत पावरफुल है, उनकी हड्डियों को लो और उन हड्डियों से वज्र बनाओ, और उस वज्र के द्वारा इस आसुर का विनाश किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उस साधु के पास जाना पड़ेगा जो ददीचि मुनि है, उनके पास जाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि आपकी हड्डियां हमें दान में चाहिए, अभी हमें हमारा ब्लड दान में मांगते हैं, ब्लड डोनेशन तो हम तैयार नहीं होते इजीली, ये कोई और चीज मांगते हैं, हमारा शरीर नहीं, शरीर से संबंधित दूसरी चीजें वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। आपने सुना होगा हमारे एक भक्त अफ्रीका में वो गए थे फेस्टिवल या जन्माष्टमी या मैराथन के समय में, तो उस समय वो एक परिवार के घर में गए हैं, उनके घर में केवल माता जी थी, और उस समय उन्होंने कहा कि अभी मैराथन आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, ये भक्त लोग बात शुरू ही करने वाले थे कि कुछ डोनेशन चाहिए टेम्पल के लिए, बात शुरू ही करने वाले थे, तो उसी समय क्योंकि अफ्रीका में बहुत टफ है लाइफ, वहां जो निग्रोज आदि है बेकार है, उनके पास कोई काम आदि नहीं है, बहुत गरीबी भी है और बहुत चोर उचक्के का उनका लाइफ है, तो ऐसे जो अफ्रीकन से चार पांच वो आए घुस गए उस घर में, बड़ा घर था, उनके हाथ में तलवार चाकू आदि बहुत सारे शस्त्र अस्त्र थे, वो आए और दो भक्त बिल्कुल शांति हो गए, एक कोने में बैठना पड़ा उनको, उनको दो तीन ने रिवॉल्वर लगाया, वो बैठ गए शांत, उस माता जी को पकड़ा बैठे थे, उनको कहा धन दे दो, उसने कहा क्या कहा नहीं, उसने कहा नहीं है धन आदि मेरे पास नहीं है, वो इतने बदमाश थे पावरफुल थे, उन्होंने एक एक ने कान पकड़ा उस लेडी का, कहा तुम्हारा कान काट देंगे, धन दे दो, उसने क्या कहा नहीं। तो ये भक्त कह रहे थे कि हमारे सामने ही वो इतने पांच सात लोग थे, और निग्रोस तो बहुत ऊंचे हट्टे कट्टे होते हैं और पावरफुल होते हैं, और उनके पास भी इतना सारा शस्त्र अस्त्र था, सामने कान पकड़ा और ऐसे काट दिया, कान को क्या किया काट दिया। तो भक्त कहते हैं मुझे तुरंत एक लाइन याद आई, चमड़े जाए लेकिन दबड़े ना जाए, मतलब हमारी सिचुएशन ऐसी है, इस शरीर से संबंधित चीजों को हम देना नहीं चाहेंगे, हाँ। तो फिर हम शरीर कैसे दे पाएंगे भगवत सेवा के लिए। तो ये दधीचि मुनि के पास सारे देवता आए और उन्होंने कहा कि हे दधीचि मुनि, हमें जन कल्याण के लिए आपकी हड्डियां चाहिए, सीधा कितना टफ है, हमसे हमारा उंगली मांग दे, चलो प्रभु जी आपका नाखून चाहिए, नहीं दे सकते। लेकिन उनके पास जब हड्डियां मांगे तो उस समय उन्होंने कहा, बल्कि वो उदार हृदय वाले थे, दधीचि मुनि कैसे थे, उदार हृदय वाले भगवान के महान भक्त थे, उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, इस जगत में हर एक व्यक्ति को अपने शरीर से सर्वाधिक प्रीति है, सर्वाधिक प्रेम इस जगत में हम किसी से करते हैं सबसे पहले अपने शरीर से, बाद में कहते हैं आई लव यू, हाँ बाद में क्या है मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन उससे पहले प्रेम किससे मेरा अपने शरीर से है। तो दधीचि मुनि ने कहा सर्वाधिक प्रेम व्यक्ति का अपने शरीर से पहले है, उसके बाद इस शरीर से उत्पन्न होने वाली चीजों से, बच्चे हैं, धन है, घर है, कार है, घोड़ा है, भैंस है, गाड़ी है, सब कुछ है, हाँ पहले मैं है और फिर बाद में मेरा। इसलिए आप देखते हैं वामन देव के रूप में भगवान बलि महाराज के पास आए, तो भगवान ने उनसे दान मांगा, तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहला उनका जो मेरा था, मेरा मीन्स मेरा राज्य, मेरा ये मेरा वो, भगवान ने दो पग में क्या लिया, सारा मेरा ले लिया। अभी भगवान उन्होंने कहा मैंने वचन दिया है तीन पग भूमि दूंगा, तो अभी देने के लिए मेरा बचा नहीं, अभी कौन बचा हो मैं, क्या बचा है मैं, तो बलि महाराज भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, आत्मनिवेदनम, उन्होंने अपने आप को ऑफर किया, अपने शरीर को, कृष्णा मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, इसको कहते हैं प्राणेर, कृष्ण की सेवा के लिए सबसे पहले कोई चीज लगानी चाहिए। कृष्ण कहते हैं गोपाल बालकों को पहले क्या लगाओ, अपना एबिलिटी के साथ पूरा लाइफ प्राण लगा दो। तो दधीचि मुनि के पास आए तो दधीचि मुनि ने कहा ये सब कहा, उन्होंने फिर कहा अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षण भंगुरे, उन्होंने कहा अहो दैन्यम कितना मिजरेबल है, अहो अहो दैन्यम अहो कष्टम, हाँ कि ये जो शरीर जिसको आप लोग मांगने के लिए आए हैं, हड्डी देना मीन्स शरीर रहेगा हड्डी देने से बाद नहीं, हड्डी देना में शरीर को त्यागना होगा, मरना होगा। तो उस समय उन्होंने कहा अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य, पारक्य मीन्स पारक्य क्षण भंगुरे, ये जो शरीर जो आप लोग मुझसे मांगने के लिए आए हो एक क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। और एक क्षण भंगुर अशाश्वत होने के बावजूद भी ये पारक्य है, पारक्य मीन्स ये दूसरों के ही यूज आने वाला है। इसका क्या होने वाला है शरीर का, या तो कुत्ते खाएंगे, गीदड़ खाएंगे, मल कीट कृमि आदि खाएंगे, या इसको जलाया जाकर राख बन जाएगा ये शरीर। इसलिए उन्होंने कहा पारक्य दूसरों के लिए है, क्षण भंगुर इस शरीर का ऐसा होना ही है। यन्न ओप कुरिया अस्वाथेर मर्त्यस्व ज्ञाति विग्रहे। तो वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति या इस शरीर से संबंधित चीजें हैं, अपना धन है, रिलेटिव्स हैं, इन सबको यदि भगवत सेवा में नहीं नियुक्त करता तो ये सारी चीजें कष्ट का ही कारण बनती हैं। क्या कारण बनती है, कष्ट का ही कारण बनती है। रियली मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, 20 साल पहले उनसे मिस नहीं 11 साल पहले मिला था उनको नेहरू प्लेस में, और 11 साल के बाद में मिला उस व्यक्ति को, सेम व्यक्ति को मैंने उसको पहचाना, उसने भी मुझे पहचाना, एक ही बार मिले थे। तो उस समय तो उसके पास सब कुछ था, और अभी मिला तो अभी भटक रहा है। क्यों, कहता है कि मेरे पत्नी ने घर से निकाल दिया, बल्कि कोठी है उसके पास, कार है, सब कुछ है, बच्चे हैं, इसने प्रेम में आकर सारा धन संपदा आदि उसके नाम में कर दिया, और कुछ ही दिनों में क्या हो गया, उसको बाहर निकाला गया। तो यहां ददिच मुनि कहते हैं कि यदि इन चीजों को कृष्ण की सेवा में एंगेज नहीं करोगे, यही चीजें आपके जीवन में महान कष्ट का कारण बनने वाली है। इस शरीर भी, शरीर से संबंधित जो धन आदि है, वो सारी चीजें कोई भी वस्तु इस भौतिक जगत की, इसलिए उसको संसारे विष वृक्ष, इसलिए विष वृक्ष कहा गया है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, ददिच मुनि ने कहा कि यदि ये शरीर का ऐसा होना ही है तो बेटर यूज क्या है, क्यों नहीं पर उपकार, दूसरों के हित के लिए कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। तो कृष्ण सबसे पहले इन वृक्षों का गुणगान करते हुए अपने जो सखागण आदि है उन सबसे कहते हैं कि हे हे सखाओं, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एतावत जन्म साफल्य, तभी जन्म की सफलता है। देहिनाम देहिशु, देहधारी व्यक्तियों की सबसे उसको पहले प्रयास करना चाहिए, प्राणेर अपना लाइफ लगाओ। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि आपने बहुत अपने जीवन गवाए माया की सेवा में, लेकिन अभी जस्ट ट्राई, केवल ट्राई करो ये जीवन कृष्ण को देकर देखो। हाँ, जैसे कि आपने जुआ खेल दिया, जुआ खेला, हाँ तो कोई व्यक्ति इतना सोचता नहीं जुआ खेल के चलो गया फिर से कमाऊंगा। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जस्ट ट्राई, हाँ ट्राई करो कृष्ण को सर्व करने का इस जीवन में। हाँ, कृष्ण आपकी सेवा को भूलने वाले नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा प्राणे, यदि कोई व्यक्ति सोचते कि नहीं नहीं बहुत हो गया, प्राण लाइफ लगाना, जीवन लगाना, हमें और भी तो करना है हमारे जीवन में, ये शरीर क्या कृष्ण की सेवा के लिए है, इसके अलावा क्या लाइफ नहीं है क्या। हाँ, लोग जैसे हम कई बार ट्रेन इधर उधर ट्रेवल कर दे तो वो देखते हैं क्या क्या, क्या हो गया आप सबको, ऐसा ना एक अलग मुद्रा में आकर अलग एटीट्यूड से वो पूछते हैं। हाँ, ये अभी तो आपका उम्र ही क्या हो गया है, ये अभी से लाल वस्त्र पहन लिए, ये तो जब बुढ़ापा आता है तब शुरू करना चाहिए, तब सोचना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा प्राणे, लाइफ लगाओ। कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं लाइफ कृष्ण की सेवा के लिए नहीं, और भी मेरे पास एंगेजमेंट्स हैं, बहुत एक्टिविटीज हैं। हाँ, तो फिर भगवान कह रहे ठीक है, थोड़ा नीचे उतारा था आपको। प्राणे दूसरा क्या है, अर्थे, प्राण नहीं लगा सकते हो तो अर्थ का लगाओ। अर्थ मीन्स धन, अर्थ मीन्स गोल, या अर्थ मीन्स अपनी जो भी संपदाएं हैं, जो भी सुविधाएं, जो भी फैसिलिटीज हैं, आपके पास एजुकेशन है, बल है, ब्यूटी है, पोजीशन है, मनी है, कुछ भी है, जो भी सामर्थ्य आपके पास है वो कहां लगाओ? कृष्ण की सेवा में लगाओ। प्राणे, प्राणेर नहीं हो रहा है तो अर्थेर, अर्थेर मीन्स धन आदि लगाओ। प्राणेर अर्थे कोई व्यक्ति कह सकता नहीं, दमड़े जाए लेकिन नहीं, नहीं गलत बोला मैं, चमड़े जाए लेकिन दमड़े नहीं जाए कृष्ण की सेवा में। व्यक्ति सोचता अभी अभी क्यों प्राण क्यों लगाना है। हम एक हफ्ता पहले इसलिए नित्यानंद प्रेम प्रभु के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, शाम के समय में एक फैक्ट्री में गए, हम फैक्ट्री के ओनर से मिलने, इधर ही कहाँ सेक्टर मुझे याद नहीं, हाईवे पर एक बड़ा फैक्ट्री था, तो उनसे मिलने गए, उनके ऑफिस में गए, पहुंच गए हम उनके ऑफिस में। पहले तो टफ होता है ऑफिस में जाना किसी के, साधु महात्मा सोचते दान मांगने आए होंगे, पहले गाड़ी हटा देता जाओ। तो भगवत कृपा से भक्त लोग कुछ ना कुछ ट्रिक योजना बना के घुस जाते हैं अंदर। तो अंदर गए तो उनका एज 68 था, कितना 68, अपने हाई क्लास ऑफिस में चेयर में बैठे थे जो भी व्यक्ति थे। तो हम गए बैठे, भगवत गीता के बारे में बताना शुरू किया, हाँ 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 मेरे पास है और ये रख रख सकता हूँ। पहले तो वो चेहरा इतना दुख में लेके बैठे थे, अकेले थे, हमने सोचा कि यहाँ फ्लॉप है, अभी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हम बहुत चिंता में थे, दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अभी क्या करें, क्या क्या टॉक शुरू करें, क्या बातें शुरू करें अभी। हाँ तो फिर जाते उनको थोड़ा पूछो, तो वो बस ऐसे घूर के देख रहे थे और हमें बोलना पड़ रहा था, बोल रहे थे, फिर प्रभु जी बोल रहे थे। तो हमने कहा कि भगवद गीता मैनुअल बुक है, ये है वो है, सब चीजें बताई। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं भगवद गीता अभी नहीं, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब पढ़ूंगा। हम दोनों को इतना हंसी आ रहा था और वही चीज हम बाहर निकले तभी वही चीज के बारे में सोच रहे थे। हम दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि अभी ये कौन से बुढ़ापे का इंतजार कौन से बुढ़ापे का इंतजार हो रहा है 60। पहले तो हमने पूछा आपकी आयु, उन्होंने कहा बस 68 है और मैं बूढ़े होने के बाद पढ़ूंगा, और उनका गंभीर है। तो मैंने कहा आपका बर्थडे कब है? कल ही बर्थडे है, मतलब जिस दिन आप पहुंचे थर्सडे गए थे तो फ्राइडे उनका बर्थडे था नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा भगवान ने स्पेशल आपके लिए हमें भेजा है यहाँ और आपके बर्थडे के लिए हम गिफ्ट लेके आए हैं। तो हमने एक खड़े होकर उनको कहा आपके लिए कृष्णा बुक आपके लिए गिफ्ट है बर्थडे का और भगवत गीता है। तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने कहा मैं 250 भगवत गीता करूंगा। तो हम पहले तो सोच रहे थे बड़ा कठिन है, टफ है, और उनका रियलाइजेशन भी बड़ा शॉक करने वाला था कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हूं। वास्तव में जीवात्मा आत्मा बूढ़ा नहीं हो सकता, और हम चाहे शरीर जितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी हमें महसूस नहीं होता कि मैं बूढ़ा हूं, क्योंकि हम बने ही है वास्तव में हमेशा नित्य नवायमान रहने के लिए, वह हमारा इटर्नल स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति प्राण नहीं लगा सकता तो उसको क्या लगाना चाहिए? अर्थे। अभी अर्थ नहीं लगा सकता और बहुत टफ होता है, लोग अपना जो धन आदि है कुत्ते के नाम पर लिख के चले जाएंगे, मरेंगे। विदेशों में अपने न्यूज पढ़ते रहते ना, कि ये कोई व्यक्ति होता कुत्ते से इतना प्रेम कि मृत्यु के समय कुत्ते के नाम पर सब अपना आधा धन प्रॉपर्टी करके लिख के चला गया। मुझे याद है पुणे में एक टाउन है, वहां एक माता जी कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी, तो उसका जो अंतिम संस्कार था उसने हजारों लोगों को बुलाया था। कुत्ते ने जब शरीर छोड़ा और बहुत बड़ा फिस्ट और सब कुछ किया, मैं भी कई लाख रुपए खर्च किए, तो हम भक्त लोग आश्चर्यचकित थे कि कुत्ते से प्रीति के लिए भी इतना कुछ व्यक्ति कर सकता है, कृष्ण के लिए क्यों नहीं? कुत्ते के प्रीति के लिए इतना करेगा तो क्या होगा? अंत काले च यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अंत्य कलेवरम। जिस जिस भावना से शरीर त्यागेगा अंतिम समय में कुत्ते से प्रेम है तो आगे कुत्ता ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए शास्त्र कहते प्राणेर अर्थे धन लगाओ, सुविधा लगाओ, वो नहीं है प्राणेर अर्थे, अर्थ नहीं है तो क्या लगाओ, प्राणेर अर्थे धिया, धिया मीन्स बुद्धि, क्या लगाओ, बुद्धि लगाओ। हर एक की अपने अपने बुद्धि की कैपेसिटी है, हर एक का इंटेलिजेंस। तो हमें अब हमारे पास चलो लाइफ नहीं लगा सकते, धन नहीं लगा सकते, तो कृष्ण कहते हैं वो ये लगाओ, धिया लगाओ, अपनी जो बुद्धि है उसको भगवत सेवा में लगाओ पूर्ण रूपे ना। हम बुद्धि को लगा सकते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, और कितनी सारी सेवाएं कृष्ण की कर सकते हो अपने बुद्धि के द्वारा, हम लोगों को जोड़ सकते हो। बुद्धि को लगाने का ये महीना भी है कि नहीं, नए नए प्लान्स बना सकते हो कि कैसे भगवत गीता को लोगों के पास दिया जाए, क्योंकि भगवत गीता ये कोई सर्वसामान्य बुक नहीं है। शास्त्र कहते हैं भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कनिका पीता, कि भगवत गीता इतना सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। भगवत गीता किंचित अधीता, किंचित मीन्स इतना भी, एक श्लोक आधा श्लोक एक शब्द भी व्यक्ति इसको स्टडी करता है, पढ़ता है, स्पर्श करता है, देखता है, और उसके साथ साथ शास्त्र कहते गंगा जल लव कनिका पीता, गंगा का जल व्यक्ति थोड़ा सा पान करता है, कनिका में थोड़ा सा बिंदु। सुकृत अपि येन मुरारी समार्चा, और या तो मुरारी या कृष्ण की थोड़ी सी भी अर्चना करता है, थोड़ी सी भी सेवा करता है, किंचित तस्य यमेन न चर्चा, किंचित भी थोड़ी भी चर्चा कौन नहीं करेंगे उसके बारे में, यम दूतास नहीं करेंगे, इतना पावरफुल है। तो आप भगवत गीता किसी को दे रहे हो, कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं दे रहे हो, आपको कृष्ण का विजिटिंग कार्ड दे रहे हो। क्या दे रहे हो, विजिटिंग कार्ड में सब कुछ होता है कि नहीं, लिखा हुआ नाम होता है, डेजिग्नेशन होता है, कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण वासुदेव यादव, क्या नाम है, इसे कह रहा हूं मैं ये उनका पूरा नाम है कृष्ण, और उनका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन उपाधि क्या है, प्रभुपाद ने लिखा कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो ऐसे कृष्ण जिनका उपाधि लिखा है, उनका नाम लिखा है और उनका एड्रेस लिखा है, एड्रेस क्या है, ब्रज वृंदावन, हम ब्रज भूमि वृंदावन धाम आदि, हाँ, और उनका मोबाइल नंबर से आप सब परिचित हैं, लाउडली और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में भगवत गीता आप किसी के हाथ में दे रहे हो तो ये कोई सर्वसामान्य छोटी वस्तु आप किसी को नहीं दे रहे हो, बहुत मूल्यवान चीज किसी व्यक्ति के हाथ में दे रहे हो, और ये ऐसी चीज है व्यक्ति को पूर्ण रूपे ना उसके जीवन से कष्टों को खत्म कर सकती है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है प्राणेर अर्थेर धिया, और कोई कहते भगवान कहते अरे सखाओ, यदि उसके पास बुद्धि भी नहीं है, कोई कहते मेरा बुद्धि आजकल काम नहीं कर रहा है, कहते ना लोग रजो और तमोगुण में होंगे तो बुद्धि काम कहाँ करेगा ठीक से, हाँ तो बुद्धि नहीं है तो भगवान कहते हैं आखिरी चीज लगाओ वाचा, क्या लगाओ, वाचा वाणी को लगाओ, वाणी को कैसे लगा सकते हो, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके, और दूसरा है कृष्ण नाम का उच्चारण करके, कृष्ण चर्चा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस वाणी से सेवा करने के लिए जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तार यही देश, मेरी आज्ञा से मेरी ऑर्डर से आप गुरु बनो, किसको अच्छा लगता है गुरु बनना, सबको अच्छा लगता है। हाथ कोई अपने घर में गुरु ही है कि नहीं, मना थोड़ी कोई कर सकता है। शास्त्र कहते माँ सबसे पहले गुरु अपने बच्चों के लिए है, पति अपने पत्नी के लिए सबसे पहला गुरु है कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से हमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वाणी के द्वारा आप क्या करो, कृष्ण की सेवा करो, जारे देखो तारे कहो, जिसको भी देखोगे मिलोगे उसको कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण ने कौन सा उपदेश दिया, कौन सा उपदेश दिया, भगवत गीता। किसको दिया, तो भगवान चैतन्य ने क्या कहा, कृष्ण उपदेश, अपना उपदेश नहीं, किसका उपदेश, हाँ कृष्ण का उपदेश। कौन से इसमें रिकॉर्ड किया है, भगवत गीता में। इस संसार में तो हजारों लोग हैं, उपदेश अपना अपना, कृष्ण का उपदेश नहीं, अपना उपदेश। तो इसलिए प्राणे रार्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, इस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तो वास्तव में कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण हमें एनकरेज कर रहे हैं कि साधु बनो, क्या बनो, हम लोग परेशान रहते हैं, अभी से बच्चा ही नहीं तो साधु बन गया। आप जब माला हाथ में लेके घूमते हो, हरे कृष्ण कहते हो, गीता पढ़ते हुए आपको किसी ने ट्रेन में बस में देख लिया, अभी से साधु बन गया, रिलेटिव वगैरह कहते हैं साधु बन गया। साधु तो मनोवृत्ति है, चेतना है, और साधु की गुण क्या है, तितिक्ष्वा, क्यों सहनशीलता है, क्योंकि उनमें कारुणिका करुणा है, दया है। इसलिए ये जो दया प्रदर्शित करने वाले भक्त हैं, साधु हैं, कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। दो प्रकार के भक्त हैं, टेक्निकल भाषा में उनको कहते हैं, पहले प्रकार के भक्त को कहते हैं भजनानंदी। भजनानंदी वो है, प्रहलाद महाराज इतने छोटे से बच्चे थे, उन्होंने कहा प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा। प्रहलाद कहते कि ऐसे साधु कुछ हैं, वो क्या करते, प्रायेण अधिकतर देव मुनया स्वविमुक्ति कामा, जो बस अपने आप को मुक्त करने में लगे हुए हैं, अपना ही जीवन सफल कराएंगे, दूसरे लोग गड्ढे में जाए, हमें क्या लेना देना, मैं ही संसार से मुक्त हो जाऊं। इसलिए वो हिमालय में जाते हैं, जंगलों में, गुफाओं में आदि में रहते हैं। मौनम चरन्ति विजने, वो विचरण करते हैं, मौन आदि धारण करते हैं, स्वविमुक्ति काम, अपनी मुक्ति के चक्कर में। नैतान विहाय कृपना विमोक्ष एको नान्यम तदश शरणम भ्रमतोनु पश्ये। उन्होंने कहा, प्रहलाद कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि इस जगत के जो जीव हैं, इनको आपकी शरण ग्रहण किए बिना दूसरा अच्छा स्थान नहीं है इस जगत में। तो भगवान कहते नरसिंह देव कि आप चलो, आप चलो, आप क्या कर रहे हो यहाँ, प्रहलाद चलो। वो कहते नहीं नहीं है भगवान, नहीं वो द्विजे पर दुरतया वैतरण्या, कहते मुझे इस संसार का भय नहीं लगता। कौन कह रहा है, प्रहलाद महाराज इतने छोटे से बालक है, हम सब भयभीत है कि नहीं, कितना भय है हम सबके जीवन में। प्रहलाद कहते कि हे कृष्ण, हे नरसिंह देव, मैं इस जगत से भयभीत नहीं हूं, वैतरणी नदी आदि से, क्यों, क्योंकि मैंने एक कला को सीखा है, एक आर्ट को मैंने सीखा है अपने लाइफ में, और वो क्या है, त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। मेरा जो चित्त है, मेरा मन है, मेरा हृदय है, वो मग्न रहता है सदा सर्वदा, किसमें, त्वद वीर्य गायन, वीर्य मीन्स गौरवशाली एक्टिविटीज, भगवान की जो है, भगवान के जो गौरवशाली कार्यकलाप है, अद्भुत जो कार्यकलाप है, उनका गान करने में, उनका उच्चारण करने में, उनके जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, इनकी चर्चा करने में मेरा जो चित्त है, हृदय मन पूरी तरह से लगा रहता है, इसलिए मुझे इस संसार का भय नहीं है। और चाणक्य पंडित भी अपने चाणक्य नीति में पहला श्लोक यही लिखते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंबर गीयते। हाँ, कोई कह सकते कि अरे क्या तुम्हें चिंता नहीं अपना भोजन को, अपना उदर निर्वाह करना का आपको चिंता नहीं है, भोजन हो या अपनी जारी सुविधाएं आपको चाहिए उसकी चिंता नहीं। वो चाणक्य सबसे पहले यही लिखते हैं, चाणक्य महान विष्णु भक्त थे, और सबसे पहले लिखते का चिंता, कहते क्या चिंता कर रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन आदि का, कहते कि आहार आदि के लिए चिंता कर, क्यों करना है, कृष्ण ने तो सबके लिए वो आवश्यकता की पूर्ति की है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे ही माँ के गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है और उसको भगवान ने जन्म लेते ही माँ के स्तनों में एक मिनट पहले स्तन में दूध नहीं होता, लेकिन बच्चे ने जन्म लेने के बाद एक मिनट के बाद वहां दूध अवेलेबल है, वहां किसने व्यवस्था की है, किसने व्यवस्था की है, कृष्ण ने। अर्भकश छोटे से बालक के लिए भी भगवान ने व्यवस्था कर दी है, तो मैं क्यों चिंता करूं। हाँ, मैंने भी एक कला सीखी है, तद वीर्य का चिंता मम जीवन है यदि हरि विश्वंबर गीयते। हरि जो विश्वंबर, विश्वंबर में जिस पालन करने वाले सारे जगत का, उनका गुणगान करना मैंने सीखा है। तो प्रहलाद महाराज भी वही कहते हैं कि मेरे, मैंने तो सीख लिया है, मेरा चित्त मग्न है, लेकिन मेरे हृदय में दुख है। किसने पूछा क्या दुख है, वो कहते शोचे ततो विमुख चेत सहा इंद्रियार्थ। मैं सोच रहा हूं, चिंता कर रहा हूं, विमुख जो कृष्ण के प्रति जिन्होंने अपना मुख नहीं मोड़ा ऐसे लोगों की चिंता कर रहा हूं। इंद्रियार्थ माया सुखाय भरा उद्वहतो विमूढ़ान। विमूढ़ान एक होता है मूड मूर्ख और दूसरा है विमूड, एक होता है नीचे न दूसरा होता है सुनीचे न, होता है कि नहीं, एक होता है दुर्लभ दूसरा होता है सुदुर्लभ। तो वैसे वो कहते हैं मूड मूड ऐसा वैसा मूड नहीं है, इतना बहुत अधिक मूड है, मूर्ख है, गधा है, ऐसा बोलते हैं। क्यों क्यों है, माया सुखाय, ये जगत का जो क्षण भंगुर सुख है उसके लिए वो पागल होना है, मैड होना है, ऐसा वो कहते हैं। इन लोगों की मुझे चिंता है। हाँ, इसलिए ये जो दया की भावना भगवान के भक्तों के हृदय में हाँ भरी हुई है, हाँ, तो उसी दया के या कृपा की मूर्ति कौन है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada। हम पढ़ते ना His Divine Grace कृष्ण कृपा की मूर्ति, कृपा दया करुणा। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद का करुणा का वर्णन करेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, हाँ, तो अतुलनीय है उनकी करुणा, जो उन्होंने सारे जीवों के प्रति प्रकट की गई है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मोर देन चैतन्य महाप्रभु पात्रा पात्र विचार नाही। प्रभुपाद ने देखा नहीं, ये शराबी है, मांस खाने वाला है, अमेरिकन है, इंडियन है, कुछ भी है, उसको क्या दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दया, तो ये दया को दूसरे जीवों के प्रति प्रकट करने से कृष्ण सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं, कंपैशन। अभी हम सब के अंदर पैशन है, क्या है उसको क्या करना है, हमें कम करना है, कम पैशन। तो वही वो तब कम होगा जिसके अंदर कंपैशन है, प्रभुपाद के अंदर कंपैशन है, हाँ, मतलब दया है। तो आप कोई कहेगा कि मुझे तो दया ही महसूस नहीं होती दूसरे के जीवों के प्रति, क्यों गीता बांटने जाओ, हाँ, दया प्रदर्शित करने का एक महीना है, क्यों मैं जाऊं। तो शास्त्र कहते ठीक है आपके अंदर वो भावना नहीं है, लेकिन एक चीज आप करोगे तो कृष्ण का जो कृपा है उसको आप आकृष्ट करोगे अपनी ओर, कृष्ण को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे, कि जिसके हृदय में करुणा है उनके इंस्ट्रक्शन को सर्व करो, उनकी सेवा में अपने आप को लगाओ। जैसे ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे थे, उनके माँ को उन्होंने पूछा भगवान कहाँ है, माँ को तो पता नहीं हो, वो भक्त नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव थी, उन्होंने कहा भक्त मैंने सुना है साधुओं के द्वारा भगवान तो जंगल में रहते हैं, बेटा जंगल गया भक्त बन गया इतना अच्छा। केवल इस प्रकार से थोड़ी सी सेवा की थी ध्रुव के लिए उनकी माँ ने, जो ध्रुव महाराज जब मृत्यु के देवता उनके पास आए, ध्रुव ने मृत्यु के देवता के सर के ऊपर पाव रखा और भगवान का जो विमान था पुष्प विमान उसमें चढ़कर चले गए, भागवत वर्णन करते हैं पहले ऐसी केस थी, मृत्यु के सर के ऊपर क्या रख के जाए, पाव रख के जाए, हाँ ऐसी पहली केस थी हिस्ट्री में। तो वो गए और उनका वैकुंठ के लिए विमान जा ही रहा था तो उनको अपनी माँ का स्मरण आया। हो तो विष्णु दूत का कहते देखो दूसरा भी विमान आपकी माँ को कैरी कर रहा है क्योंकि आपको सर्व किया है, आप महान भक्त हो। तो यही है हमारे अंदर दया की भावना है नहीं है, जागृत होगी नहीं होगी, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो कि कृष्ण आपको क्या करे, कृष्ण हमारे सामने आ भी जाए तो हम कहां देख पाएंगे, अभी लाइट चली जाए तो देख पाएंगे, अपने आप को ही नहीं देख पाएंगे तो कृष्ण को क्या देख पाएंगे। तो उन्होंने कहा कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो कि कृष्ण आपको देखे। तो ऐसा कार्य क्या, प्रभुपाद को सर्व करने का, सेवा करने का प्रयास करो। प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरे ग्रंथों का वितरण करो, इससे बढ़कर सेवा नहीं। क्योंकि भगवत गीता को दे रहे हो आप कृष्ण को, किसी जीव को उठा के कृष्ण को किसी जीव के गोद में दे रहे हो, इतना पावरफुल है। हाँ, इसलिए बहुत आवश्यक है जब भी समय मिले हाँ अपने सारी चीजों को लगाओ, समय आदि को भगवत सेवा के लिए। और ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है बुक मैराथन, जो भगवान की कृपा को आप आकर्षित कर सकते हो और कृष्ण की अनुकंपा के आप पात्र बन सकते हो, क्योंकि ये ग्रंथ सर्व सामान्य नहीं है। हाँ, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, दो चीजों से ही व्यक्ति कृष्ण में अटैच हो जाता है, एक साधु के द्वारा और दूसरा है शास्त्र के द्वारा। साधु शास्त्र कृपा है, इन दोनों की कृपा हो जाए तो वो माया से मुक्त हो सकता है। तो आप सबसे ये निवेदन है, कहने का तात्पर्य है कि भगवान के जो भक्त हैं उनका हृदय करुणा से भरा होता है और करुणा तभी हमारे अंदर जागृत हो सकती है जब हम ऐसे भक्त की सेवा में लगे जिनका हृदय करुणा से भरा है और उसके आइडियल उदाहरण श्रील प्रभुपाद है, और तभी वास्तव में हमारा जो जीवन है सफल हो सकता है। अन्यथा ये शरीर ज्यादा समय के लिए हमारे पास नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा जीवन में दो ही चीजों का स्मरण करो, एक है मृत्यु और दूसरा है कृष्ण नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मृत्यु का स्मरण रखोगे तो ये लालसा होगी कृष्ण नाम का उच्चारण करने की, भगवान की सेवा करने की, कि मेरा शरीर बहुत कम समय के लिए है, मुझे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए क्योंकि ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इसमें बीमारियां आएगी, मरने वाला है, वो सब होने से पहले ही मुझे भगवत सेवा करने दे। और कृष्ण नाम का उच्चारण करने से, स्मरण रखने से मृत्यु आदि का हमें भय नहीं होगा और जीवन में आने वाले जितनी विपदाएं हैं उनको सहन करने का, टॉलरेट करने का सामर्थ्य हमें आएगा, शक्ति आएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री राधा गोविंद देव की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।